ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
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 आज हम श्रीमद् भागवतम का 9वां स्कंद और अध्याय 10 जो परम भगवान रामचंद्र जी की लीलाएं के बारे में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को वर्णन करते हुए कल हमने ये बताया कि भरत जी रामचंद्र जी का स्वागत के लिए कैसे उनकी खड़ाव लेकर सबके सामने भगवान रामचंद्र जी के निकट पहुंचे और अत्यंत भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़े से आगे बढ़कर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान रामचंद्र जी के समक्ष खड़ाओं को रखकर भरत जी की आंखों में आंसू भरकर भरत जी आंखों में आंसू भरकर और दोनों हाथ को जोड़कर खड़े रहे। भगवान रामचंद्र अपनी दोनों भुजाओं में भरत को भरकर दीर्घ काल तक आलिंगन करते रहे और उन्होंने उन्हें अपने आंसुओं से नहला दिया। तत्पश्चात सीता देवी तथा लक्ष्मण के साथ रामचंद्र जी ने विद्वान ब्राह्मणों तथा परिवारों के गुरुजनों को नमस्कार किया। समस्त अयोध्या वासियों ने भी भगवान को सादर नमस्कार किया। अयोध्या के नागरिकों ने अपने राजा को दीर्घ काल के बाद लौटे देखकर उन्हें फूल की मालाएं अर्पित की, अपने उत्तरीय वस्त्र यानी के दुपट्टे हिलाए और वे परम प्रसन्न होकर खूब नाचे। हे राजा, भरत जी भगवान राम की खड़ाव लिए थे, सुग्रीव तथा विभीषण चंवर तथा सुंदर पंखा लिए थे, हनुमान सफेद छाता लिए हुए थे, शत्रुघ्न धनुष तथा दो तरकस लिए थे तथा सीता देवी तीर्थ स्थानों के जल से भरा पात्र लिए थी, अंगद तलवार लिए थे और रुक्ष राज जाम्बवान सुनरी ढाल लिए थे। हे राजा परीक्षित, अपने पुष्पक विमान पर बैठे भगवान रामचंद्र स्त्रियों द्वारा स्तुति किए जाने पर तथा बंदीजनों द्वारा गुणगान किए जाने पर ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो तारों तथा ग्रहों के बीच चंद्रमा हो। तत्पश्चात अपने भाई भरत द्वारा स्वागत किए जाने कर भगवान रामचंद्र जी एक उत्सव के बीच अयोध्या नगरी में प्रविष्ट हुए। जब वे महल में घुसे तो उन्होंने कैकेयी तथा महाराज दशरथ की अन्य पत्नी एवं अपनी माता कौशल्या इन सभी माताओं को नमस्कार किया। उन्होंने अपने गुरुओं को तथा वशिष्ठ को भी प्रणाम किया। उनके हम उम्र मित्रों तथा उनसे कम आयु वाले मित्रों ने उनकी पूजा की तो उन्होंने भी उनका अभिवादन किया। लक्ष्मण तथा सीता देवी ने भी वैसा ही किया। इस प्रकार वे सभी महल में प्रविष्ट हुए। अपने पुत्रों को देखकर राम लक्ष्मण भरत तथा शत्रुघ्न की माताएं तुरंत उठ खड़ी हुई मानो निश्चेत शरीर में चेतना आ गई हो। माताओं ने अपने पुत्रों को अपनी गोदों में भर लिया और उन्हें आंसुओं से नहलाकर अपने दीर्घकालीन बिछो के संताप से छुटकारा पा लिया। कुलगुरु वशिष्ठ ने भगवान रामचंद्र जी के सिर की जटाएं मुंडवा दी। तत्पश्चात कुल के गुरुजनों के सहयोग से उन्होंने चारों समुद्रों के जल तथा अन्य सामग्रियों द्वारा भगवान रामचंद्र जी का अभिषेक उसी तरह संपन्न किया जिस तरह राजा इंद्र का हुआ था। भली भांति स्नान करके तथा अपना सिर गुटा करके भगवान रामचंद्र जी ने अपने आप को सुंदर वस्त्रों से सज्जित और एक माला तथा आभूषणों से अलंकृत किया। इस प्रकार वे अपनी ही समान वस्त्र तथा आभूषण धारण किए अपने भाइयों तथा पत्नियों के साथ अत्यंत तेजोमय लग रहे थे। तब भरत की पूर्ण शरणागति से प्रसन्न होकर भगवान रामचंद्र जी ने राज सिंहासन स्वीकार किया। वे प्रजा की रक्षा पिता की भांति करने लगे और प्रजा भी वर्ण तथा आश्रम के अनुसार अपने अपने वृत्तिपरक कार्यों में लगकर उन्हें पितृतुल्य स्वीकार किया। जब भगवान राजा होते हैं तब प्रजा भी भगवान ने जो सुचित मार्ग दिया है उसी तरह अनुसरने लगती है। ये कलयुग में सब चौपट करते हैं, न तो भगवान यहां ऐसा बर्ताव करेंगे, क्योंकि कलयुग तो नाशपंथी युग है, नाश की ओर ले जाने वाला है। तो जब नाश का समय आ गया हो तो धर्म पालन कौन करेगा? कोई नहीं करेगा, क्योंकि उसकी मति इतनी जड़ और बहर मार गई है, यानी कि उसके दिमाग में कुछ अच्छी बातें सोचने की भी घुसती ही नहीं। तो ये जो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार प्रजा भी भगवान के अनुरूप, यानी कि भगवान की भक्ति के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए अपना वर्ण और आश्रम में जो सुचित कर्म है उसको करने के लिए तैयार हो गई। श्रीमद् भागवत में भगवान का धर्म पालन करने वाले चार वर्णों और चार आश्रम में आते हैं, लेकिन जब तक चार वर्णों और चार आश्रम में जो सुचित किए गए कर्म भगवान की प्रीति के लिए नहीं करते तो सब बेकार का बन जाता है। इसलिए वर्णाश्रम धर्म और सनातन धर्म में कोई अंतर नहीं है। चार वर्ण में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और चार आश्रम में ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। चारों आश्रम और चारों वर्ण के अनुसार जो जो व्यक्ति जिस ढंग में स्थित है, चार वर्ण के गुण और स्वभाव के अनुसार कर्म भी होते हैं, यानी कि हमारे कर्म क्या है उसके अनुसार हमारे वर्ण होते हैं। हमारे वर्ण यानी कि हम किस वर्ण के हैं, हम कौन सा कर्म कर रहे हैं। अरे ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ भी देखो ये राक्षस, उसका कोई वर्ण होता है? अतः नर पशु कहलाता है। तो ये जो जो सुचित कर्म वर्ण में नहीं आता वो नहीं करते तो क्या वो वर्ण के कहलाएंगे? ब्राह्मण होते भी यदि कोई शूद्र का काम करता है तो वो ब्राह्मण कैसे कहलाएगा? श्री प्रभुपाद जी अपने बचपन की बात याद करते कहते हैं कि कलकत्ता में जब वो रहते थे, छोटे बच्चे थे, तो उनको ये प्रसंग अभी भी याद है कि बगल में एक ब्राह्मण परिवार था, गरीब था, और ब्राह्मण का जो कर्तव्य है वो करने में इनको इंटरेस्ट नहीं रहा। जो नौकरी आई हाथ में ले ली, तो ये ब्राह्मण ने ठेला वहन करने का व्यवसाय अपना लिया। ठेला यानी कि मालगाड़ी, मालगाड़ी हाथों से खींचे जा रहे। कलकत्ता में देखा है किसी ने जो गए हैं तो कैसे लंबी मालगाड़ी लेते हैं और उस पर इतना बोझा डालते हैं और बाद में खींचना पड़ता है पशु की तरह। तो ये ब्राह्मण ये ठेला खींचने का धंधा करता था। बगल के लोग यदि रास्ते में मिलते तो उसे कहकर, ओ पंडित जी पाय लागू, पंडित जी मैं आपको चरण स्पर्श करता हूं। अब पंडित जी ठेला खींचते खींच के बेटे जीते रहो। यानी कि पंडित जी अपनी मूल आदत ब्राह्मण की भूलना नहीं, वो आशीर्वाद देता है लेकिन ठेला खींचता है तो उसके आशीर्वाद कैसे पड़ेंगे? नहीं, ब्रह्म जानाति दी ब्राह्मण, जो भगवान को जानता है तो ठेला खींचता है, गधे जैसी मजूरी करता है कुछ नहीं। ये वृत्तिपूर्वक कर्म जो है, वृत्तिपूर्वक जो कर्म है वो कर्म भगवान की प्रीति के लिए करना है। ऐसा नहीं कि जो आया कर लिया, वो ठीक नहीं। ब्राह्मण शिक्षक बन सकता है, सारे जगत का शिक्षक गुरु बन सकता है। तो वृत्तिपूर्वक कर्म, दूसरों को पढ़ाना, पठन पाठन, जजन जाजन, दान प्रतिग्रह, ये ब्राह्मण के कर्तव्य है स्वभाव के अनुसार। और ये कर्तव्य करने के लिए समह, दमह, तपह, शौचम, क्षांति, राजवमेव च अहिंसाम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये ब्राह्मण के कर्तव्य है। तो चार वर्णों और चार आश्रम अपने गुण और कर्म के अनुसार रचे गए हैं, भगवान ने ही स्वयं बनाया है। और जब भगवान राजा होते हैं, भगवान की चलती है, भगवान के नियम, तो ये स्वाभाविक रूप से हर एक समाज में भी ऐसे भगवान की प्रीति के लिए कर्म करने की भावना बनी रहती है। तो यहां जो लिखा है उसके लिए अभी सुनो, ये हमें सबको लागू होता है। लोगों को राम राज्य जैसी व्यवस्था प्रिय है, और आज भी राजनीतिक लोग कभी कभी राम राज्य नामक दल बना लेते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश उन्हें भगवान राम में कोई श्रद्धा नहीं है। राम राज्य चाहते हैं लेकिन राम पर श्रद्धा नहीं है। कभी कभी कहा जाता है कि लोग ईश्वहीन ईश राज्य चाहते हैं, किंतु ऐसी महत्वाकांक्षा कभी पूरी होने वाली नहीं है। अच्छी सरकार तभी विद्यमान रह सकती है जब नागरिकों तथा सरकार के मध्य वैसा ही संबंध हो जैसा कि रामचंद्र तथा उसके नागरिकों ने प्रस्तुत किया। भगवान रामचंद्र जी ने अपने साम्राज्य पर वैसा ही शासन किया जिस तरह पिता अपनी संतान का पालन करता है, और नागरिकों ने भी रामचंद्र जी की अच्छी सरकार से कृतज्ञ होकर उन्हें पितृतुल्य मान लिया। नागरिकों तथा सरकार के मध्य पिता पुत्र का ही संबंध होना चाहिए। जब परिवार में पुत्र अच्छा प्रशिक्षण पाते हैं तो वे माता पिता के आज्ञाकारी होते हैं, और जब पिता योग्य होता है तो वह संतानों की अच्छी देखभाल करता है। जैसा कि स्वनिर्भरता वर्णाश्रम गुणान्विता शब्दों से सूचित होता है, अच्छे लोग अच्छे नागरिक थे क्योंकि उन्होंने वर्ण तथा आश्रम व्यवस्था स्वीकार की थी, जिससे अनुसार समाज में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र नाम के चार वर्ण तथा ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास नामक चार आश्रम होते हैं। यह वास्तविक मानव सभ्यता है। लोगों को विभिन्न वर्णाश्रमों के धर्मों के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, जैसा कि भगवद्गीता में चौथे अध्याय में 13वें श्लोक में भी उसकी पुष्टि हुई है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। चार वर्णों की स्थापना भिन्न गुणों एवं कर्म के अनुसार की जानी चाहिए। अच्छी सरकार का पहला सिद्धांत यह होना चाहिए कि वह वर्णाश्रम प्रणाली को लागू करें। वर्णाश्रम का उद्देश्य लोगों को इष्टभावित भावना करना है, होने के लिए प्रेरित करता है। वर्णाश्रमाचरणतः पुरुषेण परम पुमान विष्णु आराध्यते सपन्था। ये समूची वर्णाश्रम प्रणाली लोगों को वैष्णव बनाने में समर्थ होने के लिए है। ब्राह्मण होना यानी कि भगवान की जानकारी, भगवान की सेवा इत्यादि उसका मूल कर्तव्य दूसरे तीन वर्णों को बताने के लिए। ये ब्राह्मण समाज का गुरु होता है। समाज में तो चारों वर्ण आती है लेकिन जो ब्राह्मण है वह तीनों वर्णों का गुरु बनता है। तो कहने का मतलब जो कर्तव्य यदि ब्राह्मण नहीं कर सकता तो समाज की व्यवस्था बिगड़ जाएगी, और कलयुग में ब्राह्मण बनना ही मुश्किल हो जाता है कि सारे लोग शूद्र जैसे ही व्यवहार करते हैं। विष्णुरस्य देवता, जब लोग विष्णु को भगवान मानकर पूजते हैं तो वो वैष्णव बनते हैं। अतएव लोगों को उसी तरह से वर्णाश्रम प्रणाली के माध्यम से वैष्णव बनने के लिए शिक्षा दी जानी चाहिए, जिस तरह रामचंद्र जी के राज्यकाल में प्रत्येक मनुष्य को वर्णाश्रम प्रणाली का पालन करने के लिए शिक्षित किया जाता था। मात्र कानून और अध्यादेश के बल पर नागरिकों को आज्ञाकारी और कानून पालक नहीं बनाया जा सकता। सरकार कानून पर कानून थोपती जाती है और नागरिक उसका पालन करने में काफी झिझकते हैं, कोई करता ही नहीं। और इंडिया में कानून क्या बात होती है, लोग ही अपने हाथ में कानून ले लेते हैं। यदि किसी ने किसी का एक्सीडेंट किया तो समझो वो ड्राइवर को पकड़ कर पीटेंगे। यदि ड्राइवर ने किसी को चबा दिया, मार दिया, तो उसको भी पत्थर से खत्म करेंगे। सरकार या पुलिस की राह देखते ही नहीं लोग, इतनी अराजकता है। इसलिए ज्यादातर लोग ये गाड़ी चलाते नहीं भारत में। एक्सीडेंट से तो घबराते हैं लेकिन खुद मरने की भी घबराहट हो जाती है। तो कानून पालक ऐसे कोई नहीं बन सकते। जैसे गौ हत्या का कानून, गौ हत्या पर प्रतिबंध करने के लिए सारे देश में दो ही राज्य में नहीं है, एक केरला में नहीं है और पश्चिम बंगाल में नहीं, बाकी सभी राज्यों में है, लेकिन सभी राज्यों से गाय की कत्ल होती है, पालन कौन करता है? हमें पता है कि 1996-97 की बात है कि गुजरात का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल था, वणिक राजा बनता है, देखो बनिया है, व्यापारी है, राजा बनता है पटेल। तो उसने कानून किया और सब लोगों को कहा हमने अपनी जिम्मेदारी बजा ली है, गुजरात में गैया की कत्ल नहीं होगी। लेकिन उसने कहा कि वैसे गैया की हेरफेर हो सकती है तो उसको रोकना आप लोगों का काम है, हमने तो कानून बना दिया, पालन करना आपके हाथ में, वो जिम्मेदारी हमारी नहीं। अरे कौन सा राजा है, क्या प्रजा है, कभी मानती ही नहीं, कानून बनाते जाओ तो क्या हुआ। और बाइबल में 10 कमांडमेंट दिए गए हैं, दाउ शैल नॉट किल से लेकर बहुत सारे ऐसे कमांडमेंट दिए गए हैं और उसका कोई पालन नहीं करता, और सरकार कानून पे कानून बनाती है। तो एक विवेचक ने कहा, इसका नाम जॉन मिल्ट है, कि नो वंडर वी मेड 33 मिलियन लॉज जस्ट टू एग्जीक्यूट 10 कमांडमेंट्स एंड वी स्टिल कैन नॉट एग्जीक्यूट वन। 33 करोड़ कानून, मनुष्य कानून क्यों बनाता है? यदि कानून हो तो व्यवस्था हो, लेकिन मूलभूत कानूनों का वो अनादर करता है। सिर्फ 10 कानून पालन नहीं करते तो 33 करोड़ कैसे पालन करेंगे? लेकिन ये लोग कानून बनाना छोड़ते नहीं। कानून बनाना छोड़ते नहीं। इनको अधिकार दिया जाता है कानून बनाओ कानून बनाओ। अरे कोई कानून से थोड़ा सुविधा या सुरक्षा प्राप्त कर सकता है या सुसंचालन कर सकता है? कानूनों द्वारा नहीं होती। अपनी आचरिते सिखाए लो भागवत धर्म, जैसा राजा वैसी प्रजा, क्योंकि राजा का कैसा वर्तन है। यदि राम राज्य चाहते हैं तो राजा भी ऐसा होना चाहिए कि राम जैसा, तभी राम राज्य बन सकता है। इस कलयुग में उल्टा धंधा, राजा पर भरोसा नहीं, सरकार पर किसी को भरोसा नहीं, क्योंकि प्रजा ही उसको लाती है। ये कलयुग में जो डेमोक्रेसी हो तो डीमन जैसे सभी लोग हैं, तो एक डीमन को लाएंगे, सही ना? लोग ही डीमन जैसे, तो अब किस पर भरोसा रखें? एकाएक कलयुग को सफाई थोड़ी होगी, अभी तो बहुत साल बाकी है। पता है कितने साल कलयुग में काटने हैं हम सबको? काटने के लिए तैयार हो? 4,27,000 बस। कितने जन्म के चक्कर काटने की तैयारी बुलाओ? यदि इसी जन्म में मिटाना है तो हरे कृष्ण माला करने लगो, नहीं तो पछताओगे। जो व्यवस्थित रूप से भगवान का नाम नहीं लेता उसका उद्धार भी नहीं हो सकता। यानी कि हमें अपने आचरण द्वारा दूसरों को शिक्षा दे सकते हैं, नहीं तो नहीं दे सकते हैं। हम सरकार के पास झूठी अपेक्षा मत करें, क्योंकि सरकार झूठी है। आपके पास कोई प्रलोभन देकर या हमारी संस्कृति को बचाने के लिए ये करेंगे, ये लाएंगे, वो करेंगे, ये सब फोकट, इन पर भरोसा नहीं करना। जो वचन पालन नहीं हो सकता, कलयुग में वचन पालन कौन करता है? सत्य, ये त्रेता युग में रामचंद्र जी को वचन पालन करना पड़ा, लेकिन कितना कष्ट भोगना पड़ा। कौन वचन पालन करने के लिए तैयार है? सभी अपनी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वचन का भंग करने वाले हैं। ये देखो ना, छोटा सा बच्चा मां के गर्भ में भगवान को वचन देकर आता है कि मैं वचन का पालन करूंगा, मैं आपका भजन करूंगा, मुझे एक बार ऐसी दशा में से हटाओ निकालो। और प्रसूति होती है तो वो वचन भी भूल जाता है, बुलाया जाता है, इसलिए मैं माया में फंसते हैं। तो देखो ये कलयुग बहुत विचित्र है। कलौ दोष निधे राजन, दोषों की निधि, क्योंकि हमारी कोई लायकात भी नहीं है, हमारी कोई भी प्रवृत्ति ऐसी अपने आप में सफल नहीं है, बल्कि अस्ति एको महद गुणा महान गुण एक कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगम परम जजेत। भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करके ही हम मुक्ति पा सकते हैं। तो हम अपने लिए स्वार्थी बने, अपनी मुक्ति के लिए स्वार्थी बने और भगवान का कीर्तन करने लगे। क्या हरे कृष्ण वाले सिर्फ हरे कृष्ण के अलावा कुछ करते ही नहीं? अरे करे क्यों, दूसरी चीज करने की आवश्यकता है क्या? जहां देखो खाने में भी हरे कृष्ण, नाचने में भी हरे कृष्ण, गाने में भी हरे कृष्ण, आरती में भी हरे कृष्ण, नौकरी करते जाते ये भी हरे कृष्ण करता है, ऐसा तो कोई धंधा नहीं। रेडियो में भी हरे कृष्ण करके आ गए, टेलीविजन में भी हरे कृष्ण करके आ गए, माता जी रसोई पकाती तो हरे कृष्ण करती है, सारा जीवन हरे कृष्णमय बन जाता है। दिक्कत क्या है? खाना है, पीना है, सब मिलता है। तो कहने का मतलब है, आप मुआ बिना स्वर्ग न जावाए। यदि स्वर्ग में भी जाना है तो हमें मरने की आवश्यकता खुद को है, दूसरों को नहीं है। दूसरे के भरोसे पर अरे वो मरे तो हमें कोई फायदा नहीं, हमें ही मरना पड़ेगा। तो मात्र कानून या अध्यादेशों के बल पर नागरिक को आज्ञाकारी के कानून पालक नहीं बनाया जा सकता, यह असंभव है। विश्व भर में न जाने कितने राज्य विधानसभाएं तथा संसदें हैं, फिर भी लोग चोर तथा उचक्के हैं। अतएव अच्छी नागरिकता लादी नहीं जा सकती, अपितु नागरिक को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। जिस तरह केमिकल इंजीनियर, वकील तथा अन्य ज्ञान के विभागों में विशेषज्ञ बनने के लिए छात्रों को प्रशिक्षणार्थ स्कूल तथा कॉलेज होते हैं, उसी प्रकार विद्यार्थियों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी बनने की शिक्षा देने के लिए स्कूल तथा कॉलेज होने चाहिए। इससे अच्छी नागरिकता प्रारंभिक शर्त पूरी होगी, वर्णाश्रम गुणान्विता। सामान्यतः यदि राजा या राष्ट्रपति राजर्षि होता है तो प्रजा तथा मुख्य कार्यकारी के मध्य का संबंध स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन ये राजर्षि ही कहाँ है, ये राजलोभी है, किस्सा कुर्सी का ही करते हैं, दूसरे का किसी का नहीं है। तो इस कलयुग में वर्णाश्रम प्रणाली की उपेक्षा के कारण लोग सामान्यतया चोर और उचक्के हो जाते हैं, यानी कि सब जगह चोरी करने लगते हैं, अपनी आज्ञा पालन नहीं करना। ये कैसे आ गए आज? ले तो प्रजातांत्रिक प्रणाली में ऐसे चोर तथा उचक्के और चोर उचक्कों को पैसा इकट्ठा करते हैं, जिससे हर सरकार में अव्यवस्था रहती है और कोई भी सुखी नहीं रहता। किंतु भगवान रामचंद्र के राज्य में अच्छी सरकार का उदाहरण मिलता है। यदि लोग इस उदाहरण का अनुसरण करें तो सारे विश्व में अच्छी सरकार बन जाएगी, लेकिन इसके लिए तक कलयुग में असंभव है। हमें अपना परिवार ही कम से कम यदि कृष्ण भावना भावित करें, रामचंद्र जी जैसा व्यवहार घर में पले, इतना काफी। सब लोगों के लिए हमें अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो यहां से हमें ये शिक्षा प्राप्त होती है कि भगवान रामचंद्र जी ने जैसा राज्य किया वैसी भावना हमारे हृदय में है, क्योंकि वो अपना सनातन व्यवहार है, इसीलिए भगवान के साथ का सनातन व्यवहार है इसीलिए, और ये सनातन व्यवहार हमें ही स्थापित करना होता है, दूसरा कोई नहीं स्थापित करेगा हमारे लिए, हमें मार्गदर्शन दे सकता है, इसलिए हम जितने अपने उद्धार के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं उतना ही हमें फायदा। उद्धार करने का साधन कलयुग में है और वो भगवान का नाम है, उसके अलावा दूसरा उद्धार करने का कोई साधन नहीं है। तो कम से कम इतनी अकलमंदी तो रखनी चाहिए कि भगवान का नाम यथावत ग्रहण करके हम अपना भवसागर पार कर सकते हैं। तो कम से कम हमारी आसपास हमारी साथ जो रहने वाले हैं तो इन सब का उद्धार हो सकता है। भगवान रामचंद्र त्रेता युग में राजा बने थे, किंतु उनकी सरकार अच्छी होने के से वह युग सत्य युग जैसा था। प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक एवं पूर्ण सुखी थी। पापी जीवन से मुक्ति पाना हो तो श्रद्धापूर्वक भक्ति पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता है तो अवश्य ही सारे पाप कर्मों से छूट जाएगा और उसका जीवन सफल हो जाएगा। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, यह भगवान रामचंद्र जी का आशीष है कि वे इस कलयुग में गौर सुंदर रूप में प्रकट हुए हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं, वही रामचंद्र। और किसको वह रूप बताया था? षडभुज रूप। बोलो, चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में अपना षडभुज रूप, जिसमें छह हाथ, दो हाथ में बांसुरी, एक हाथ में धनुष बाण और तीर, और तीसरा कौन सा रूप, दंड और कमंडलू, यानी कि सन्यासी का रूप, रामचंद्र जी का रूप और कृष्ण भगवान का रूप, ये एक में तीन किसको बताया? यह सार्वभौम भट्टाचार्य को बताया, मायावादी फिलोसोफर था सार्वभौम। भगवान की बातें उल्टी पुल्टी बोलता था तो चैतन्य महाप्रभु ने डांट मारी, इनका अभिमान तोड़ा और उसे भगत बनाया। सार्वभौम भट्टाचार्य को मुक्ति का प्राध्यापक बनाया और उस पर कृपा करके उसकी विशुद्ध भक्ति जब चालू हुई तो उसने अपना अंतरंग भक्तों में से एक स्थान प्राप्त किया, और तब चैतन्य महाप्रभु ने वही परम पुरुष जो कृष्ण भगवान थे वही राम भगवान थे तो अपना ये सन्यासी रूप, सन्यासी रूप का वर्णन चैतन्य महाप्रभु का यानी कि भगवान का कहां मिलता है? विष्णु सहस्रनाम में मिलेगा। संन्यास कृत शांता शांति परायण, संन्यास कृत, भगवान सन्यासी बन सकते हैं, अनेक रूप धारण कर सकते हैं, लेकिन उसकी आगाही होनी चाहिए। हे भरत श्रेष्ठ महाराज परीक्षित, भगवान रामचंद्र जी के राज्य में सारे वन, नदियां, पर्वत, राज्य साथे द्वीप तथा साथे समुद्र, सारे जीवों को जीवन की आवश्यक वस्तु प्रदान करने के लिए अनुकूल थे। जब भगवान रामचंद्र इस जगत के राजा थे तो सारे शारीरिक तथा मानसिक कष्ट, रोग, बुढ़ापा, बिछोह, पश्चाताप, दुख, डर तथा थकावट का नाम निशान नहीं था। यहां तक कि न चाहने वाले को भी मृत्यु भी नहीं थी। जो नहीं चाहता और जीना ही चाहता है तो मृत्यु भी कहते कि कहां भैया जी जा मैं नहीं आ रही। इतनी सारी सुविधा इसलिए थी कि भगवान श्री रामचंद्र संपूर्ण जगत के राजा थे। ऐसी ही परिस्थिति इस कलयुग में तुरंत लागू की जा सकती है, भले ही यह युग समस्त गुणों में बेकार क्यों न हो। कहा जाता है कली काले नाम रूपे कृष्णेर अवतार, इस कलयुग में भगवान ने अपना नाम रूपी ही अवतार धारण किया। नाम प्रभु की जय। इसलिए नाम प्रभु की सेवा के लिए क्या करोगे? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि हम अपराध रहित होकर कीर्तन करें तो इस युग में राम तथा कृष्ण अब भी उपस्थित है। राम राज्य अत्यधिक लोकप्रिय एवं लाभप्रदायक था और इस कलयुग में भी इस हरे कृष्ण आंदोलन के प्रचार से भी वैसी परिस्थिति तुरंत आ जा सकती है। अब देखो, भगवान रामचंद्र जी ने एक पत्नी रखने का तथा किसी अन्य स्त्री से संबंध न रखने का व्रत ले रखा था। वे एक साधु राजा थे और उनका चरित्र उत्तम था, क्रोध उन्हें छू तक नहीं गया था। उन्होंने हरेक को विशेषतया गृहस्थों को वर्णाश्रम धर्म के रूप में सदाचारण का पाठ पढ़ाया। इस तरह उन्होंने अपने निजी कार्यकलापों को सामान्य जनता को शिक्षा दी। श्री रामचंद्र जी ने एक पत्नी व्रत का ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत किया। लोगों को एक से अधिक पत्नी नहीं बनानी चाहिए। उन दिनों लोग एक से अधिक पत्नी से विवाह करते थे, यहां तक कि श्री रामचंद्र जी के पिता भी एक से अधिक पत्नियां थी। दशरथ राजा को 3 पत्नियां थी, किंतु भगवान रामचंद्र जी ने आदर्श राजा के रूप में केवल एक पत्नी सीता देवी को स्वीकार किया। जब रावण तथा अन्य राक्षसों द्वारा सीता जी का अपहरण हो गया था तो भगवान रामचंद्र चाहते तो हजारों सीताओं से ब्याह कर सकते थे, किंतु हमें यह शिक्षा देने के लिए कि वे अपनी पत्नी के प्रति कितने निष्ठावान थे, उन्होंने रावण से युद्ध किया और अंत में उसे मार डाला। उन्होंने रावण को दंड दिया और अपनी पत्नी की रक्षा लोगों को यह शिक्षा देने के लिए की कि वे एक पत्नी व्रत बने। भगवान रामचंद्र जी ने केवल एक ही पत्नी स्वीकार की और आदर्श चरित्र प्रकट किया। इस तरह उन्होंने गृहस्थों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया। गृहस्थों को चाहिए कि भगवान रामचंद्र जी के आदर्श के अनुसार जीवन बिताएं, जिन्होंने यह दिखलाया कि किस तरह पूर्ण व्यक्ति बना जाए। गृहस्थ होकर या पत्नी या बच्चों के साथ रहने की भी कभी भर्त्सना नहीं की जाती, बशर्ते कि वर्णाश्रम धर्म के सिद्धांतों के अनुसार जीवन व्यतीत किया जाए। इतना ही आग्रह साधु रखते हैं। यदि हम वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपना गृहस्थ जीवन नहीं पालन करते हैं तो जिम्मेदारी हमारी ही रही, दूसरों की नहीं। हम जन्म मरण के गोथे में, हमें उबारने का कोई दूसरा उपाय मिलेगा नहीं। जो लोग इन सिद्धांतों के अनुसार जीवन बिताते हैं, चाहे गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी अथवा वानप्रस्थ, सभी समान रूप से महत्वपूर्ण है। सीता देवी अत्यंत विनीत, आज्ञाकारी, लज्जालु तथा सती थी और सदा अपने पति के भाव को समझने वाली थी। इस प्रकार अपने चरित्र एवं प्रेम तथा सेवा से वे भगवान के मन को पूरी तरह मोह सकी। जिस तरह भगवान राम आदर्श पति हैं, उसी तरह माता सीता भी आदर्श पत्नी है। ऐसे संयोग से पारिवारिक जीवन अत्यंत सुखी बन जाता है। यदि आचरित श्रेष्ठ तत्त्व करो जनः, महापुरुष जो भी उदाहरण प्रस्तुत करते हैं सामान्य लोग उसका अनुकरण करते हैं। यदि राजा, नेता तथा ब्राह्मण, शिक्षक वैदिक साहित्य से प्राप्त उदाहरण प्रस्तुत करें तो सारा जगत स्वर्ग बन जाए। निसंदेह इस जगत के नागरिक नारकीय दशाओं का नामोनिशान भी मिट जाए। यानी कि गृहस्थों को पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण करना चाहिए, जिसमें 12 महाजन मुख्य होते हैं। 12 महाजन में एक स्त्रियां नहीं, यानी कि पुरुषों इन लोगों का अनुसरण करें। स्वयंभू नारद शंभू कुमार कपिलो मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलि वैयासिकी वयम। इन 12 महाजनों का पुरुष अनुसरण करें और स्त्रियां किसका अनुसरण करें? 5 सतियों का अनुसरण करें। ये 12 का अनुसरण करने में तो बहुत देर लगेगी, 5 का अनुसरण करने में पहली पहुंच जाएगी भगवान की पास। देखो इसलिए वैसे जिम्मेदारी यूं दिखाई देती होगी कि स्त्रियों पर ज्यादा है परिवार के पालन के अलावा धर्म की रक्षा करना, पर फिर भी उनका स्त्री सहज स्वभाव आसानी से समझ सकता है, उठा सकता है। लेकिन जहां तक उसका स्वभाव भक्ति के संबंध में पराधीन रहता है, यानी कि भक्ति भी करने के लिए उसे बहुत पराधीनता दिखाई देती है परिवार की समाज की इत्यादि, तो उसको इतना लाभ नहीं होगा। भक्ति में पराधीन होने की आवश्यकता क्या है? भक्ति परिवार पर आधार नहीं रखती, न समाज पर आधार रखती है, तो उसकी पराधीनता स्वीकारना मूर्खता है। स्त्रियों को चाहिए कि हम मूर्ख नहीं बने। हाँ, भक्ति में भगवान पर आधार रखना होता है, दूसरों पर नहीं रखना होता है, क्योंकि भगवान गारंटी देते हैं, अपने परिवार वाले कोई गारंटी नहीं देते। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये स्यु पापयोनय स्त्रियो वैश्यास तथा शुद्रा ये आतीम पराम गतिम, ऐसी गारंटी कौन देगा? भगवान देते हैं। लेकिन आदत बन गई है पुरुषों पर अधीनता या पारिवारिक अधीनता या सामाजिक अधीनता, इसमें मन संकुचित बन जाता है। जब भगवान को हृदय में बिठा चुकी होती है तो उसका हृदय इतना विशाल हो जाता है, वो संकुचित नहीं रहती, बल्कि बहुत आसानी से भगवान की प्रीति के लिए ऐसा अच्छा काम करके बताती है कि पुरुष को पता भी नहीं चले, परिवार को पता भी नहीं चले। तो जो भगवान की कृपा से जैसा देह मिला हो उसमें पराधीनता किसी की नहीं समझनी चाहिए। भगवान पर आश्रित रहता है वो कभी किसी का पराधीन नहीं। इसीलिए हमें भगवान का आश्रय भगवान के नाम द्वारा मिलता है तो क्यों न लें? बोल कौन कौन लेना चाहता, हाथ ऊंचा करो। अरे वाह, सभी यहां कम दिखाई दिए। अच्छा ठीक है, मान लिए। अब हम भगवान रामचंद्र जी जो विश्व पर राजा बनते हैं, तो राजा के कर्तव्य निभाने के लिए उन्होंने जो कुछ किया वो समझने की बात है, क्योंकि यहां कोई विरोधाभास नहीं मिलेगा। श्रीमद् भागवत में विरोधाभास नहीं मिलेगा। आपके मन में भी काफी प्रश्न होंगे, सीता का त्याग कर दिया, गर्भवती थी लेकिन किसी का सुना करके उन्होंने तुरंत निश्चय कर दिया कि मैं सीता से बिछड़ जाऊंगा। और कहा है सीता को पसंद भी नहीं आया, लेकिन पति की आज्ञा मानकर उसने कोई विरोध भी नहीं किया। लेकिन ये जो प्रसंग है तब 3 गुणों से नहीं देखना चाहिए, सत्व रज और तमो गुणों की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। पार्थिव या हमारी सामाजिक परिस्थिति के अनुसार यदि हम किसी का त्याग कर देते हैं चाहे उसकी पत्नी प्रेग्नेंट भी क्यों न हो, लेकिन ऐसा नहीं है, यह हमारे सामाजिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, आध्यात्मिक दृष्टि से देखना, क्योंकि रामचंद्र जी और सीता साक्षात भगवान और उनकी शक्ति के रूप में आए हैं। तो ऐसा काम कोई गर्हित काम नहीं करेंगे, इसके पीछे काफी रहस्य है। संक्षिप्त में हम बताते हैं, इस अध्याय में बताया गया है कि भगवान रामचंद्र किस तरह अपने छोटे भाइयों सहित अयोध्या में रहे और उन्होंने किस तरह विभिन्न यज्ञों का संपन्न किया। भगवान रामचंद्र जी ने अपनी पूजा करने वाले अनेक यज्ञ संपन्न किए और इन यज्ञों के अंत में उन्होंने होता, अध्वरी, उद्गाता तथा ब्रह्मा पुरोहितों को दान में भूमि दी। उन्होंने क्रमशः पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी तथा दक्षिणी सारी दिशाएं दे दी, जो शेष रहा उसे आचार्य को दे दिया। सभी ब्राह्मणों ने भगवान रामचंद्र जी की ब्राह्मणों में श्रद्धा तथा अपने दासों के प्रति उनके वात्सल्य को देखा, अतएव उन्होंने भगवान की स्तुति की और कुछ भी दान में उनसे लिया था उसे लौटा दिया। भगवान आप राजा के कर्तव्य में जो जो ब्राह्मण वर्ग हैं, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान जब अवतार लेते हैं तो ये दो चीज की रक्षा करने के लिए आए, दो के हित के लिए आते हैं, जिसके द्वारा सारी संसार का हित इसमें निहित है। कौन कौन का हित? गैया और ब्राह्मण, दोनों का ही हित। गैया का हित भगवान देखते हैं, क्योंकि ये गैया के आधार पर हमारी सारी आजीविका बनी रहती है। लेकिन कलयुग में क्या होता है? कलयुग में गैया के आधार पर सारी आजीविका बनती रहती है, बोलो। कलयुग में जहां धर्म का नाम निशान नहीं है, सिर्फ एक ही महान गुण बताया है और भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करना, बाकी सब डिस्क्वालिफिकेशन है। तो जब राम राज यानी कि भगवान आते हैं, भगवान का राज्य चलाने के लिए सर्वप्रथम राजा को टैक्स लेना पड़ता है, सारी लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था इत्यादि सब राज्य सरकार ही तो करती है ना। तो उसमें गैया पर आधार रखा है, गो और ब्राह्मण, गैया पर पहला विचार करो। और कलयुग में गैया पर आधार है या नहीं, हाथ ऊंचा करो। कोई समझ रहा है ये प्रश्न? चलो, खाने पीने के लिए यानी कि अपनी आजीविका वहन करने के लिए इकोनॉमी चाहिए। आज की इकोनॉमी गैया पर टिक रही है? गैया ही तो टिका रही है। पहले जमाने में भी गैया पर ही टिकती थी, गैया के अलावा कोई अपनी इकोनॉमी टिकाने वाला है ही नहीं, क्योंकि भगवान ने गैया का हित देखा है। गैया के हित द्वारा सारे लोगों का हित होता है। जो गैया भगवान द्वारा पालन करने से भी सारी इकोनॉमी टिका सकती है, तो आज गैया मर के सारी इकोनॉमी टिका रही है। बहुत सारे लोग लिपस्टिक करते हैं, ये गैया ने जब मारते हैं ना तो उसकी चर्बी निकालते हैं और उसके सारे सौंदर्य प्रसादन बनाते हैं। अरे टूथपेस्ट में भी डालते हैं गैया की चर्बी, साबुन में डालते हैं, कहां नहीं है। यदि गैया की कत्ल कलयुग में नहीं होती तो कलयुग शुरू होता ही नहीं। लेकिन गैया की कत्ल करना क्या बुद्धिमत्ता है या मूर्खता है? यदि तीन युगों में सत्य युग, त्रेता और द्वापर युग में गैया की कत्ल नहीं हुई है, उसका नाश करने की कोशिश की गई है, लेकिन कलयुग में तो नाश हो रहा है। तीन युग में तो अच्छा जीवन था और यही गैया और गैया की संतान बेल द्वारा जो सारी इकोनॉमी थी वो सारी इकोनॉमी अकलमंदी वाली थी। आज बेवकूफ लोग वही गैया को मारकर सारी इकोनॉमी फैलाते रहते हैं। आप जरा गौर से ध्यान देना इस प्रश्न, जो जो बाहर कमाई करने वाले हैं चाहे किसी भी नौकरी में हो, क्या इनका पैसा या तनख्वाह आती है उसमें गैया का लहू द्वारा या कोई संपर्क हुआ? चलो एक उदाहरण दो, हम गौ मांस नहीं खाते लेकिन बॉस तो खाता होगा जो तनख्वाह देता है, तरंजित है ना इकोनॉमी। हम भी वो गैया की कत्ल खाने कत्ल करने वाले, क्या हाथों से ही हमारा पेट पालन होता है? ये कलयुग का धर्म है। कहीं भी जाओ, आज भारत में भी देखो, भारत दूसरे नंबर का देश है जहां गैया की इतनी कत्ल होती है। सर्वप्रथम तो कनाडा आता है, दूसरा नंबर का इंडिया। गौ माता गौ माता, सिर्फ झूठे आंसू बहाते हैं और गैया की रक्षा करने की कोई ताकत नहीं। झूठे झूठे कानून बना देते हैं गौ रक्षा का और पालन करते नहीं। गैया की कत्ल रोकना असंभव जैसा लगता है। इस कलयुग की शुरुआत हुई है। अरे देखो तो सही, कलयुग के जब जब आगे बढ़ती होगी तो गैया भी खत्म हो जाएगी, खाने के लिए बच्चे रहेंगे। और कहा है कि दुष्ट जैसे लोग अपने बच्चे को खाएंगे और भगत लोग घास खाएंगे। कम से कम घास जैसा दारू तो यहां मिलता है, दूसरी जगह नहीं मिलता, वो खाया करो। हम जब से आए तब से दारू की खाते, दारू का दारू का। तो कहने का मतलब है एक इकोनॉमी सेन इनको इकोनॉमी कहलाती है, दूसरी इनसेन। तो कलयुग में गैया का हित नहीं है इसलिए हमारा दुर्भाग्य बन बैठा समझो। जैसे सीता देवी के प्रकोप से रावण कब से मर चुका था, इसलिए कलयुग के हर एक आदमी इसी तरह मरने वाले हैं। ये धरती पर बोझा हम खड़े कर रहे हैं, धर्म का पालन नहीं करते, धरती पर सिर्फ जूठा वजन डालते रहते। यानी कि धरती माता गैया का स्वरूप लेकर ब्रह्मा जी के पास जाती है। देखो सात माता में गैया का भी स्थान है और धरती का भी स्थान है। आदव माता तथा धात्री राजपुत्रिका गुरु पत्नी धेनु तथा पृथ्वी, ये सात माताओं जो धारण करने वाली है, यानी कि हमारे शरीर को धारण करने वाली गौ माता। अपनी मां तो 4-6 महीने में दूध पिला सकती है, बाकी तो गैया ही ले लेती है अपना जीवन, मरते समय दूध पिलाने वाली है। जब गैया का दूध खत्म हो जाता है तो उसको कत्ल खाने में बेचते हैं, अपनी माँ का दूध खत्म हो जाता है तो हम नहीं बेचते उसे, मामा में इतना अंतर करते हैं, क्योंकि इनसे एक कलयुग का आदमी इनसे पागल, इनसे नहीं खोपड़ी गई उसकी, जिसकी बुद्धि गई बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि का नाश होते वो मरता ही है, वो साफ हो जाएगा। तो रामचंद्र जी नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, ये भगवान के ऐसे अवतार हैं। तो रामचंद्र जी सारे यज्ञ संपादित करते हैं, जैसे यज्ञ संपादित करने के लिए प्रजा का सुख देखते हैं, और ब्राह्मणों को ये गैया दान देते हैं, ब्राह्मण जानते हैं कि यही भगवान है, ये सारी संपत्ति भगवान की ऐश्वर्य कह रहा है, वो भगवान को वापस कर देते हैं, इतना संतोष है, और लेकर घर जाकर बैंक बैलेंस नहीं बनाते या इन्वेस्टमेंट नहीं करते, भगवान को वापस कर देते हैं। यहां तो भगवान को वापस करने की तो बात ही कहां, अरे 10% कोई दान देता है तो भी बहुत उपकार करता है ऐसा लगता है। और जो ब्राह्मणों में श्रद्धा भगवान राम की बनी बैठती, तो वो श्रद्धा के कारण उनकी भक्ति पलती, और भक्ति के द्वारा भगवान के साथ प्रेम का व्यवहार कर सकते थे। जब ये सब होने लगा तब भगवान रामचंद्र जी ने सोचा कि चलो सामान्य पुरुष का वेश बनाकर भगवान अपने प्रति लोगों की धारणा जानने के लिए उद्देश्य से अपनी राजधानी में घूमने लगे। अकस्मात एक रात उन्होंने एक व्यक्ति को अपनी पत्नी से बातें करते सुना जो पराये पुरुष के घर गई थी। उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को डांटते हुए सीता देवी के चरित्र पर संदेह व्यक्त किया। भगवान तुरंत ही घर लौट आए और ऐसे लोक अपवादों से डर कर, यहां ये शब्द बताया, लोक अपवादों से डर कर, रामचंद्र जी को किसी का डर नहीं है, लेकिन यहां एक आदर्श बताने के लिए कि लोक अपवाद से डर कर उन्होंने सीता देवी का संग ऊपरी मन से त्यागने का निश्चय कर दिया, यानी कि ऊपर ऊपर से लोगों को दिखाई दे कि वो त्याग रहे हैं। इस तरह उन्होंने सीता देवी को वनवास दे दिया। वे गर्भिणी थी, अतः उन्होंने वाल्मीकि मुनि के आश्रम में शरण ली, जहां उनके जुड़वा पुत्र लव तथा कुश उत्पन्न हुए। अयोध्या में लक्ष्मण के भी दो पुत्र हुए, अंगद तथा चित्रकेतु। इसी तरह भरत के तक्ष तथा पुष्कल और शत्रुघ्न के भी दो पुत्र सुबाहु तथा श्रुतसेन उत्पन्न हुए। जब भगवान रामचंद्र जी की ओर से भरत विभिन्न देशों पर विजय प्राप्त करने के लिए गए तो वे लाखों गंधर्वों से लड़े। उन्होंने युद्ध में मारकर उन्होंने अपार संपत्ति प्राप्त कर ली, जिसे वे घर ले आए। शत्रुघ्न ने मधुवन में लवण नामक असुर को मारा और मथुरा की राजधानी बनाया। तभी सीता देवी ने अपने दोनों पुत्र को वाल्मीकि के संरक्षण में छोड़कर पृथ्वी में समा गई। यह समाचार पाकर रामचंद्र जी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने 13,000 वर्षों तक यज्ञ किया, यानी कि सीता जाने के बाद 13,000 साल। ये जो त्रेता युग है, सामान्य मनुष्य 10,000 साल तक जी सकता था, इतनी आयुष्य लंबी बनाई थी, क्योंकि युग धर्म का आचरण करने में बहुत इतना सरल था, लेकिन धर्म का आचरण सरल नहीं था। धर्म के आचरण के लिए बहुत कड़प्पन रखना पड़ता था कि कुछ भी चूक न हो जाए। इसका मतलब यह है कि यदि रामचंद्र जी 13,000 साल तक सिर्फ वन में जाकर तप करते हैं, 13,000 साल तक, मानो उन्होंने 14 साल तो वनवास किया, तो 13,000 साल तक तो कम से कम जिए, वो पृथ्वी पर राज किया, बाद में वो अंतर्धान हो गए, लेकिन उनका वनवास कितना छोटा था, 13,000 साल में 14 साल का ही या 12 साल का, 12 साल का वनवास, 12 साल का वनवास कहके नहीं दिया ना, क्या 14 साल का दिया, 14 हरिश्यो 12 साल को किसको मिला था, तो एक 13वां अज्ञात का, तो ये 11 12 और 13 ऐसे ही चलता है। हम भी 11 12 13 जब किसी को आदमी मर जाता है तो 12वां 13वां ही करते हैं, ही तपश्चर्या का कारण होना चाहिए, ये तपश्चर्या बताते हैं, शुद्धिकरण की प्रक्रिया के लिए करना पड़ता है। तो जब भगवान रामचंद्र 13,000 साल तक उन्होंने पृथ्वी पर राज किया, और सामान्य मनुष्य 10,000 साल तक जी सकता था, द्वापर युग में 1,000 साल तक जी सकता था, और कलयुग में 100 से भी कम हो गया, 100 साल जीना तो बहुत जीना बनाकर कहलाता है। वो अपना मोरारजी भाई देसाई, वो कह रहा कि मैं सेंचुरी करूंगा, मानव मूत्र का प्रयोग करके मैं इतना लंबा जी सकता हूं, उसका दावादारी, लेकिन 99 में ही इनकी डांडी गुल होगी, 99 वर्ष में एक बाकी रहेगा, यानी कि 100 साल जीना भी, 100 साल जीना भी बेकार। कहने का मतलब है कि लंबी आयुष्य हो तो लंबा हमें प्रयोग करना पड़ता है धर्म के आचरण के लिए, एक कलयुग है छोटी आयुष्य है तो इतना सरल और छोटा सा प्रयोग दिया जाता है जिसकी वैल्यू सरीखी बताई गई है। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, 16 नामों का भगवान का, और 16 माला करना, क्या बहुत लंबी प्रोसेस है क्या? नहीं, प्रमाण में तो बहुत छोटी है, तो हमें उसका उपयोग कर लेना चाहिए। इस तरह सुखदेव गोस्वामी भगवान रामचंद्र जी के तिरुधान की लीला का वर्णन करके और यह सिद्ध करके कि भगवान केवल अपनी लीलाओं के लिए प्रकट होते हैं, इस अध्याय का समापन रामचंद्र जी के कार्यकलापों का सुनने का फल बताकर और भगवान के द्वारा पूजा की रक्षा, प्रजा की रक्षा तथा अपने भाइयों के प्रति प्रेम प्रदर्शन के वर्णन से करते हैं। तो हम 2-4 श्लोक इसमें बताना चाहते हैं। सुखदेव गोस्वामी वो प्रसंग का वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक बार जब भगवान रामचंद्र रात्रि में किसी को बताए बिना वेश बदलकर छिपकर अपने विषय में लोगों का क्या अभिमत जानने के लिए घूम रहे थे, तो उन्होंने एक व्यक्ति को अपनी पत्नी सीता देवी के विषय में कुछ अनुचित बातें कहते सुना। वह व्यक्ति अपनी उल्टा पत्नी से कह रहा था कि तुम दूसरे व्यक्ति के घर जाती हो, अतएव तुम उल्टा तथा दूषित हो। अब मैं और अधिक तुम्हारा भार नहीं वहन कर सकता। भले ही रामचंद्र जैसा स्त्री भक्त पति सीता जैसी पत्नी का स्वीकार कर ले, मैं उनकी तरह स्त्री भक्त नहीं हूं, अतः मैं तुम्हें फिर से नहीं रख सकता। ये देखो, व्यक्ति में अहंकार आता है और भगवान को हत्था बनाकर अपनी वासना पूर्ण करने के लिए अपनी पत्नी को भी डांटता है और इनका त्याग करता है और दूसरी बिलाने की तैयारी बताता है। ऐसे प्रसंग में रामचंद्र जी को इतना बुरा क्यों लगता है? यूं देखे तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अल्पज्ञ तथा घृणित चरित्र वाले व्यक्ति अंतशंत बकते रहते हैं, फालतू बकते रहते हैं। रामचंद्र जी जब कुछ बोलते हैं तो परम सत्य निकलता है, और ये धूर्त व्यक्ति क्या परम सत्य बोल रहा है? ऐसे धूर्तों के भय से भगवान रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी सीता देवी का परित्याग किया, यद्यपि वे गर्भिणी थी। इस तरह सीता देवी वाल्मीकि मुनि के आश्रम में गई। समय आने पर गर्भवती सीता देवी ने जुड़वे पुत्र को जन्म दिया, जो बाद में लव तथा कुश नाम के से विख्यात हुए। उनका जात कर्म संस्कार वाल्मीकि मुनि द्वारा संपन्न हुआ और लक्ष्मण जी ने भी दो पुत्र पैदा किए और भरत शत्रुघ्न ने भी किया। रामचंद्र जी ने आज्ञा दी, भाइयों ने कहा कि हम आपके सेवक हैं, बोलो क्या करें। तो रामचंद्र जी ने कहा, जाओ सारी दुनिया जीतो, राम राज्य फैलाओ। राम राज्य में किसी भी प्रकार का लोगों को कष्ट न पहुंचे उसके लिए सारे उपाय करो। यानी कि कोई अंतशंत बात करके भी कष्ट देता है तो रामचंद्र अपने को आदर्श का पात्र बताते हैं। इसका मतलब ये है कि अब वो लीला समाप्त कर रहे हैं। रामचंद्र जी लीला समाप्त करते पहले सीता जी को कहते कि जाओ तुम वंश पैदा करके अपने स्थान में चली जाओ। सीता जी कहां से प्रकट हुई थी? भूमि में से। किसको पाई गई? जनक महाराज को। तो इसी तरह वो जहां से आई वहां से चली गई। भूमि से में तो कोई बच्चा पैदा होता है क्या? राधा रानी भी इसी तरह प्रकट हुई थी। लेकिन ये प्राकट्य जन्म कर्म च में दिव्यम होता है, इसलिए अपनी अकल में ऐसा जाता नहीं। इसलिए भगवान का नाम लेकर हमें पवित्र होने की कोशिश करनी चाहिए, तब कुछ कुछ समझ आएगी। जो पवित्र नाम लेता नहीं है उसकी पवित्रता आती भी नहीं, तो समझदारी भी आती नहीं। सुखदेव गोस्वामी आगे बताते हैं कि अपने पति द्वारा परित्यक्ता सीता देवी ने अपने दोनों पुत्र को वाल्मीकि मुनि में देखरेख में छोड़ दिया। तत्पश्चात भगवान रामचंद्र जी के चरण कमलों का ध्यान करती हुई वे पृथ्वी में प्रविष्ट हो गई। सीता देवी के लिए रामचंद्र जी से बिछुड़ कर रह पाना असंभव था, अतएव वे अपने दोनों पुत्र को वाल्मीकि मुनि के संरक्षण में छोड़कर पृथ्वी में समा गई। जब भगवान की तिरोधान लीलाएं होती हैं, तिरोधान यानी कि अवतरण करना भी दिव्य कहलाता है, और चले जाते हैं वो भी दिव्यता से चले जाते हैं, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा सामान्य बहाना निकाल देते हैं जिसका उपयोग करके वो चले जाते हैं। कृष्ण भगवान भी हाँ कैसे अंतर ध्यान हो गए, कोई जरा नाम का एक बूढ़ा शिकारी था, भगवान जब वृक्ष के नीचे आराम कर रहे थे क्योंकि उससे पहले उन्होंने सारे यादवों को मरवा डाला क्योंकि वो लीला समेट रहे थे हा? तो पारधी ने भगवान के अंगूठे में जो हीरे की चमकती हुई जो अंगूठी देखी हा? सोने की, तो वो कोई हिरण की आंख है ऐसे मानकर उन्हें वहां तीर छोड़ा हा? तो कहा जाता है कि वहां से भगवान को चोट लगी और लहू निकलने लगा और इसमें चले गए। नहीं नहीं ऐसे नहीं जाते, देखो ये तो बहाना है। जब भीष्म पितामह अर्जुन को मारने के लिए इतने कटिबद्ध हुए थे क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा उस दिन की थी कुरुक्षेत्र के युद्ध में कि आज मैं पांडवों में से किसी एक को मारूंगा, ये मेरा वचन है, तो अर्जुन को मारने के लिए उन्होंने काफी जोम लगाया और अर्जुन घबरा रहा था। भीष्म पितामह ने इतना शौर्य बताया, उन्होंने सोचा मैं ऐसी करामत दिखाऊं कि भगवान को अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए अपना वचन तोड़ने की फर्ज बन जाएगी। तो सचमुच अर्जुन काफी भय में था, तो भगवान गुस्से में आकर रथ से उतरकर दौड़े और हाथ में टूटे हुए रथ का पहिया उठाकर चक्र घुमाने लगे और भीष्म को मारने जा रहे। उस समय भीष्म जो बाण छोड़ रहे थे तो भगवान के शरीर में भी लग रहे थे और जैसे खून बह रहा हो ऐसा, इतने सारे बाण लगे थे तो भगवान को इसकी दरकार नहीं हुई। अब एक छोटा सा बाण ये बूढ़ा जरा ने लगा दिया शिकारी ने, तो उसमें भगवान चले जाते हैं। अरे ऐसी तो कैसी बात है, ये बुद्धि में जाती नहीं, क्योंकि भगवान का जाना भी दिव्य होता है। ये बाण लगा तो उस समय भगवान ने अपने चारों हाथों में जो आयुध थे शंख चक्र गदा पद्म इनको बुलाया तो साक्षात इनका व्यक्तित्व खड़ा होकर आता है और ये भगवान के गोलोक वृंदावन धाम का मार्ग तय करते हैं और भगवान शांत मुद्रा में जैसे आए थे वैसे जाते हैं, मर के नहीं जाते। और देवता लोग भगवान जा रहे हैं इसलिए उनके अवकार के लिए सभी अंतरिक्ष में खड़े होकर वो देख रहे हैं। तभी रामचंद्र जी और इनकी लादिनी शक्ति सीता देवी, रामचंद्र जी ने एक सामान्य पुरुष को अपनी पत्नी को उल्टा कहकर ताड़ने यानी कि डांट मारी और सीता की साथ यानी कि ऐसा सरीखा बता दिया। रामचंद्र जी उससे रखेंगे, मैं नहीं रखता ऐसी स्त्री को हा? तो ये क्या कोई बुद्धिगम्य बात है? लेकिन फिर भी रामचंद्र जी ने उसकी महत्ता देखी। रामचंद्र जी ने इसकी महत्ता देखी क्योंकि उन्होंने तय किया कि अभी निवृत्ति का समय आ गया है, अपनी लीला समाप्त तो हो रही है। हा? क्योंकि धर्म थोड़ा खंडित होगा ही, क्योंकि युग बदलेगा यानी कि धर्म की हानि बढ़ेगी। ये कलयुग तो चार युग में अंतिम युग बताता है, बाद में दूसरे युग फिर से शुरू हो जाएंगे, लेकिन उसकी सफाई तो होगी ही होगी। और जितना जितनी गहराई से दूषित हो रहा है ये युग, उतनी गहराई से सफाई होगी, वो कल की करेंगे। हम सफाई में क्यों फंसे, हम खुद अपनी सफाई क्यों न कर लें कि कल की को हमें छूने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। क्या विचार है आप लोगों का? कल की के द्वारा सफाई कराओगे या अपने आप करोगे? बोलो हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा,
कृष्णा
कृष्णा, कृष्णा
हरे हरे,
हरे हरे,
हरे राम,
हरे राम,
हरे राम,
हरे राम,
राम राम,
राम राम,
हरे हरे।
तो
ये मामूली कारण का भी भगवान कितना महत्व दे देते हैं। हम कलयुग में तो ऐसा स्वीकारने के लिए तैयार नहीं, अरे किसे को क्या परवाह, ऐसे तो बोलते ही जाते हैं। जब हाथी जाता है तो कुत्ते भौंकते ही रहते हैं। एक मामूली आदमी के वचनों पर रामचंद्र जी को सीता जैसी सीता, अपनी ही लादिनी शक्ति को दूर करने की आवश्यकता है। अरे भैया तू क्या जाने, तुझे तो यही स्वर्ग लग रहा है, इसलिए तो अपनी पत्नी के साथ इंद्रिय तृप्ति के नशे में ऐसा बकता है। ये अटैचमेंट है, लेकिन भगवान हमें डिटैचमेंट सिखाते हैं, यानी कि सांसारिक जीवन का जो नशा है, ये नशे वाले ऐसे बोलते हैं, ये नशे में से जो छूटना चाहते हैं तो अकलमंदी रखकर जरा सोचेंगे कि नहीं, भगवान के लिए इतना मामूली सा प्रसंग, और वो भी उसकी पत्नी को डांटने के लिए कुछ बोल रहा है, लेकिन सीता का नाम दे दिया। भगवान के मन में वो पवित्र नहीं था ना, इसीलिए भगवान हमेशा पवित्र होते। पवित्रम परमम भवान, भगवान का स्वरूप पवित्र होता है, हमेशा पवित्र और परम पवित्र होता है। सीता देवी परम पवित्र है, परम पवित्रता पर यदि कोई लांछन लगाता है, कोई टीका या आलोचना करता है, तो वहां से हमें हट जाना चाहिए। देखो भगवान नाम में सर्वप्रथम अपराध क्या है? भगवान नाम का प्रचार करने वाले महा भक्तों की निंदा करना। जो भक्त भगवान का नाम का प्रचार कर रहा है, उसकी निंदा करना, तो यहां निंदा हो रही है। और भगवान की अंतरंग शक्ति की, जब नाम का प्रचार करने वाले की निंदा भी अपराध होता है, क्योंकि वो परम पवित्रता की महत्ता नहीं रखता, इसीलिए तो अपराध करता है। नाम भी लेने वाले जो नाम की महत्ता पर ना समझ होते, अपराध करते रहते हैं। इसीलिए यह अपराध पर कोई परित्राण नहीं है, उसका कोई उपाय नहीं है कि अपराध की क्षमा हो। हरि धामे अपराधे तारे हरि नाम, यदि भगवान पर यदि कोई अपराध करता है तो भगवान का नाम लेकर माफी मांग ले तो ठीक है, लेकिन कोई वैष्णव जो भगवान की सेवा करता है, भगवान के नाम के प्रचार की सेवा करता है, और भगवान के नाम द्वारा दूसरों को भगवान की शरणागत होने के लिए उत्तेजना दे रहा है, उसका यदि कोई आलोचना करे, तिरस्कार करे, तो भगवान के नाम पर बड़ा अपराध बन जाता है। तो तोमस थाने हरि अपराधे ना ही परित्राण, इनका कोई पाश्चात्याप नहीं है। दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज की बात पता है? अम्बरीश महाराज महान भक्त थे। दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज एकादशी का व्रत करते थे और एकादशी का व्रत का पारणा का समय जब आया तब पहुंचे। उस समय ऐसा था कि उनको ऐसी इच्छा हो गई, चलो हम स्नान करके आते हैं। और जब दुर्वासा मुनि आते तो अकेले नहीं आते, उसके हजार शिष्य साथ में होते ही है, यानी कि हम भी एकादशी का पारणा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन संयोग वसात ऐसा हुआ कि पारणा का समय जा रहा था और ये आ नहीं रहे थे ना धोके, हजार लोगों को एक साथ में बाथरूम जाना हो तो कितनी देर लगती है। तो दुर्वासा मुनि को देर लग गई। तो अम्बरीश महाराज ने अपने पुरोहितों इत्यादि से सलाह ली, तो उन्होंने समझाया कि भैया पानी पी लो तो उपवास टूटता भी है और नहीं भी टूटता है, आप सुरक्षित रहोगे। लेकिन ये दुर्वासा मुनि क्रोध के अवतार ना समझ रहे हैं, उन्होंने उसका अपमान देखा कि ये महाराज अम्बरीश अपने को बड़ा महाराज और भक्त बताते हुए दंभ करते हैं, मैं आज को उसके दंभ की मजा चखाता हूं, मेरे आने की भी राह नहीं देखी, उसने उपवास तोड़ दिया, दुष्ट है, नराजदम है, ये गाली बकने लगे और अपने बाल में से एक को तोड़कर एक बड़ा राक्षस पैदा किया और अम्बरीश महाराज को मारने के लिए उद्धृत हो गए। लेकिन भगवान की रक्षा न भगवान भक्तों की रक्षा कैसे करते हैं? भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र छोड़ा और वो राक्षस को मार दिया। बाद में वो सुदर्शन चक्र वो दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ा। दुर्वासा मुनि तो भय के मारे भागने लगे कि अरे ये तो मुझे जलाता है, मुझे मारने आया, भागो भागो भागो। वो अपनी दैवी शक्ति का उपयोग करके अपने बचाव के शरीर की रक्षा के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। ओ ब्रह्मा जी मुझे बचाओ, ये देखो सुदर्शन चक्र। ब्रह्मा जी जान गए कि दुर्वासा ने कुछ गड़बड़ी की है कि भैया यहां मत आ, ये तो भगवान का सुदर्शन चक्र है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, भाग भाग भाग, तो यहां से निकल जल्दी, नहीं तो तुझे खत्म करेगा, मुझे भी बुरा जलाएगा, जा तू यहां से। तो दुर्वासा मुनि को भगा दिया। तो दुर्वासा मुनि कैलाश पहुंच गए, शिव जी भगवान आपकी शरण में। तो शिव जी कह के कौन है? दुर्वासा, अरे तो मेरा बेटा है, शिव जी का अवतार है दुर्वासा, पता है ना किसका बेटा था? अत्रि अनुसया की कहानी में आता है, अत्रि भगवान को बेटा मांगते थे, अनुसया भी, दोनों ने बहुत काफी तपश्चर्या की, लेकिन भगवान कौन है वो जानते नहीं थे, इसलिए तीनों को प्रार्थना पहुंच गई, ब्रह्मा विष्णु और महेश को। तो ये तीनों आकर खड़े हो गए। अत्रि कह के मैंने तो एक बेटा मांगा था, तीन की क्या आवश्यकता है? तो उन्होंने कहा कि तूने हमें तीन को बुलाया तो तीन बेटे बनकर आएंगे ही आएंगे। अत्रि समझने में कहा मैं तो फंस गया, एक बेटा मांगा था, तीन आए गए। तो ब्रह्मा द्वारा सोम यानी कि चंद्रमा का देवता अवतरित हुआ, शिवजी द्वारा दुर्वासा अवतरित हुए, और विष्णु जी स्वयं दत्तात्रेय बनकर आ गए। तो यह दुर्वासा मुनि क्रोध की मूर्ति और इनकी हालत ये है। तो शिव जी के पास पहुंचा तो पिताजी बचाइए बचाइए, कि क्या हुआ, कि देखो सुदर्शन आ रहा है मेरे पीछे, बेवकूफ भगवान को परेशान करता है, जा तो भगवान कौन है जानता नहीं है, भगवान की माफी मांगने चले जा सीधा, यह मता। तो दुर्वासा तो कि तो पिताजी ने भी डांट मारी, भागो, भगवान के पास चरण में पहुंच गए कि भगवान हमें बचाओ, आपका सुदर्शन को मनाओ, ये तो मुझे जला रहा है। तो भगवान के को सुदर्शन ने जलाया है, अरे भैया तो भाई मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि एक बार सुदर्शन अपनी उंगली से छूटता है वापस काम करके बिना आता नहीं, तो ऐसा नहीं भगवान, मैंने आपके भक्त का अपमान किया। ओ भक्त का अपमान किया, तो यहां से हटो जल्दी। भगवान कहते मैं माफ नहीं करूंगा तुझे, तू जानता है उपाय कौन है, जा भाग जल्दी, भक्त के चरण में गिर जा। तो दुर्वासा मुनि तुरंत आए, अम्बरीश महाराज के चरण में गिर गए और कह रहे हैं कि मैंने आपका अपमान किया है, कृपा करके आपकी कृपा से ही सुदर्शन शांत होगा, नहीं तो मैं फंस गया हूं बराबर। तो ऐसी हालत है, अहंकार में क्या क्या नहीं कर देते हैं लोग, और जिनके पास बहुत सारी सत्ता होती है ना तो अहंकार भी जबरा होता है काफी बड़का। तो ये मामूली बाबत में भगवान इतना बड़ा स्वरूप क्यों डार देते हैं, इनको तो बहाना चाहिए भी था, लेकिन भगवान परम पवित्र है, ये किसी का भी लांछन स्वीकार नहीं कर सकते। तो अपनी सीता पवित्र है वो जानते हैं, फिर भी एक आदर्शता बताने के लिए, भगवान राजा थे तो राजर्षियों में ऐसे गुण आए कि प्राण जाए फिर वचन न जाए, ये वचन परम सत्य के आधार पर होते हैं, तो वो मान्यता और जो वंश की परंपरा होती है तो वही सिद्धांत को ऊंचा उठाने के लिए काम करती है। तो यहां इसी ढंग से भगवान ने अपनी लीला समेटने के लिए ये ऐसा बर्ताव किया, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, और पार्थिव बुद्धि से समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह हम जरा समझने का प्रयत्न करते हैं। सीता देवी के पृथ्वी में प्रविष्ट होने का समाचार सुनकर भगवान निश्चित रूप से दुखी हुए, यद्यपि वे भगवान हैं किंतु सीता देवी के महान गुणों का स्मरण करके वे दिव्य प्रेमवश अपने शोक को न रोक सके। सीता देवी द्वारा पृथ्वी में प्रवेश करने के समाचार से उत्पन्न भगवान राम के शोक को भौतिक मानना नहीं चाहिए, आध्यात्मिक जगत में भी विरह भाव होते हैं किंतु ऐसे भावों का आध्यात्मिक आनंद माना जाता है। वियोग जनित शोक तो ब्रह्म में भी पाया जाता है किंतु आध्यात्मिक जगत में ऐसे वियोग भावों को आनंदमय माना जाता है। ऐसा भाव तस्य प्रेमावश्यत्व स्वभाव का लक्षण माना जाता है और यह लादिनी शक्ति के प्रभाव में रहता है तथा प्रेम द्वारा नियंत्रित रहता है। भौतिक जगत में ऐसे वियोग भाव केवल विकृत प्रतिबिंबित होते हैं। स्त्री तथा पुरुष अथवा नर और मादा के मध्य आकर्षण हर जगह और हर समय पाया जाता है जिससे हर व्यक्ति सदा भयभीत रहता है। यहां तक कि ब्रह्मा तथा शिवजी जैसे नियंताओं में भी ऐसी भावना पाई जाती है और उनके लिए भी ये भय के कारण है। तो फिर उन लोगों के विषय में क्या कहा जाए जो इस भौतिक जगत में ग्रस्त जीवन के प्रति आसक्त हैं। तो ये आसक्ति के कारण वो मूढ़ व्यक्ति अपनी पत्नी को डांट रहा है और वो आसक्ति शायद उसको निकालकर दूसरी में लाएगा, लेकिन आसक्ति तो चालू रहेगी। वो विरक्त होकर थोड़ा बोल रहा है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि जब आध्यात्मिक जगत में प्रेम तथा दिव्य आनंद के अनुभव का इस जगत में विकृत प्रतिबिंब पड़ता है तो ये वे बंधन का कारण बन जाते हैं। जब तक इस जगत में पुरुष स्त्रियों के प्रति या स्त्रियां पुरुष के प्रति आकर्षित होती रहेगी तब तक जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहेगा, किंतु आध्यात्मिक जगत में जन्म मृत्यु का कोई भय न होने से ऐसी वियोग की भावना दिव्य आनंद की कारण स्वरूपा है। वास्तव में अनुभवों की विविधता होती है किंतु वे सब दिव्य आनंद के समान गुणों वाले हैं। तो इसमें यह समझने की आवश्यकता बनी रहती है कि हमारे में दिव्य गुण पैदा हो तब भगवान रामचंद्र जी की ये अद्भुत लीलाएं समझ में आ सके। अपनी दिव्यता प्रकट आने के लिए अपने आत्मा की सफाई यानी कि चेतना के शीशे पर जो धूल जमी है ना उसकी सफाई करने की बाकी, वो सफाई कौन करेगा? चेतो दर्पण मार्जनम, चेतना रूपी शीशे दर्पण का मार्जन यानी सफाई भगवान का नाम करता है। और आप अनुभव कर सकोगे कि कैसे वो परम विजय थे, इसकी विजय कैसी होती है। तो इतनी भगवान के नाम पर श्रद्धा रखें और अपना जीवन परिपूर्ण करें। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा
कृष्णा,
हरे हरे,
हरे हरे,
हरे राम,
हरे राम,
राम
राम,
हरे हरे। यज्ञ पूरा करने के बाद दंडकारण्य में रहते हुए भगवान रामचंद्र जी ने जिन चरण कमलों में कभी भी कांटे चुभ जाते थे उन चरण कमलों को उन्होंने उन लोगों के हृदय में रख दिया जो निरंतर उनका चिंतन करते हैं। तत्पश्चात वे ब्रह्म ज्योति से परे अपने धाम वैकुंठ में प्रविष्ट हो गए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री प्रभुपाद की
जय।
प्रलय पयो बिजले वृतवान वेदम विहितमहित्र चरित्रम केशव गीता शरीर जय जगदीश Thank you.
Thank you.